संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में आज हम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र करेंगे। हरि सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंत सो पंत, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। प्रथम श्रोता आप हैं श्री राधे श्याम सीताराम, दूजो हैं रसखान, आपके सभी भक्तों संतों के चरणों में प्रणाम। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ये रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए हैं और इनका जो सिद्धांत था वो शुद्ध अद्वैत सिद्धांत था जिसका इन्होंने प्रतिपादन किया। और ये शुद्ध अद्वैत में श्री कृष्ण जी को ही अपना सर्वस्व मानते थे। सेवा भाव इनका विशिष्ट था, पुष्टि मार्ग भी इनके मत को कहते हैं, पुष्टि मार्ग संप्रदाय को। तो ये भगवान की सेवा को सबसे ऊंचा मानते थे, बढ़ के मानते थे। तो सेवा का एक दृष्टांत हम आपको देते हैं। एक बार एक राजा थे, उन्होंने एक मंदिर की स्थापना कराई, ठाकुर जी की स्थापना हुई, तो वहाँ पे एक पंडित जी को रख दिया राजा ने सेवा के लिए और कहा कि भाई जो भी तुम्हारा मन हो, जैसे भगवान की सेवा करना, जो भोग राग की व्यवस्था हो, जितना पैसा लगे उसकी चिंता मत करना, लेकिन ठाकुर जी की बढ़िया सेवा किया करो। तो पंडित जी बड़े चाव से सेवा करते थे, बहुत मन से सेवा करते थे। एक बार वो सेवा के लिए बाहर गए, उन्हें एक सुंदर चलते चलते खरबूजा दिखा, बड़ा सुंदर खरबूजा रखा हुआ है। इनका मन हुआ कि खरबूजा ले लेते हैं, इन्होंने दो आने में तय कर लिया खरबूजा। तभी बादशाह का एक नौकर आया, उसने भी देखा वो पसंद आ गया, वो बोलने लगा हम लेंगे इसे। उसने ज़्यादा उसके पैसे लगाए, इनके भी हट आ गई, भाई अब भगवान के लिए ले जा रहे तुम, क्या बादशाह के लिए ले जा रहे, सबका बादशाह तो वो है। इन्होंने भी करते करते दो आने का वो खरबूजा 100 रुपये का बोली लग गई। अच्छा, वो बादशाह का नौकर तो छोड़ के चल दिया, उसे ये था कि यार 100 रुपये में अगर खरीद भी लिया इससे ज़्यादा तो क्या पता बादशाह और डांट दे हमें, वो तो छोड़ के चला गया। पर ये 100 रुपये का ही लेके आ गए। अब ये इन्होंने ला के जैसे ही रखा और ये चले गए स्नान करने। स्नान करने गए कि स्नान करके आके भगवान को भोग लगाता हूँ, पर भगवान से नहीं रहा गया, उन्होंने वो उठा लिया भगवान ने वो। जब ये स्नान करके आए तो उन्हें खरबूजा नहीं मिला, खरबूजा नहीं मिला तो ये बड़े परेशान हुए, इतना सुंदर खरबूजा भगवान के लिए लेके आया, अरे भोग भी नहीं लगा, गायब हो गया कहीं। इन्होंने भगवान के पट खोले तो इन्होंने देखा कि श्री विग्रह के छाती से लगा हुआ है खरबूजा। अब ये देख के बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने मतलब हमारे आने का भी इंतज़ार नहीं किया, इतना इन्होंने मतलब प्यार है भोग से, जो हम लेके आए बड़े प्यार से लेके आए। इन्होंने काट के भगवान को भोग अर्पण किया। अब वो जब राजा को खिलाया वो प्रसाद, राजा कहने लगा कि भाई आज तक पंडित जी ऐसा खरबूजा नहीं खाया और ऐसा प्रसाद हमें कभी नहीं मिला। वास्तव में जो भगवान के अधरामृत से मतलब अधर से स्पर्श हो तो अधरामृत बन गया है वो भगवान का, तो वो उसको राजा को मिला है। तो पंडित जी ने बताया कि जी महाराज जी ऐसे ऐसे करके 100 रुपये का ख़रीदा, तो भगवान ने सही में आनंद से भोग लगाया इसका। बोले तुमने बहुत अच्छा किया, ये 1000 रुपये का भी मिलता ना तो तुम ले लेते। तो ये भाव हैं भगवान के प्रति, आपके जैसे भाव होंगे भगवान के भी वैसे ही भाव बन जाते हैं। एक और ऐसे ही, ये मथुरा की घटना है, वल्लभ कुल के ही एक वैष्णव थे उनकी घटना है। वो एक बार उन्होंने गुलाब के फूल देखे, एक टोकरी में बड़े सुंदर गुलाब के फूल रखे हुए हैं, उन्होंने चलते हुए श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अर्पण करने के लिए 1 रुपये में तय कर ली वो टोकरी। तो उसी समय वहाँ पर नवाब ठहरा हुआ था कोई मथुरा में, उसका भी कोई सेवक आया हुआ था, बड़े सुंदर फूल थे वो, उसने भी वहाँ सेम घटना वहाँ पे भी हुई कि वो पैसे बढ़ाते चले गए 1 रुपये की वो 1000 रुपये के हो गए। पंडित जी के पास तो इतने पैसे नहीं थे, पर वो भी ठन गई उन्हें भी कि भाई हमारे ठाकुर जी तो सबसे बड़े हैं, अगर ये अपने मालिक के लिए इतने खर्च ये कर सकते हैं तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी के लिए हम नहीं कर सकते। वो उस ठन गई, ये चाहे जितने में भी सौदा हो, चाहे हमें अपना घर बेचना पड़े, लेकिन करेंगे हम भगवान को अर्पण। और हुआ ऐसा ही, उसे अपने घर के सारा सामान बेचना पड़ गया, यहाँ तक कि बर्तन तक बिक गए उसके, पर उसने वो 1000 रुपये में खरीदे फूल खरीद के उसने भगवान को अर्पण किए। अच्छा, ये मथुरा जी में अर्पण किए उसने। गोकुल में श्री विट्ठलनाथ जी, जो श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, वो भगवान की सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जैसे ही उन्होंने अर्पण किया तो श्री भगवान जी का सर झुक गया, सेवा करते हुए जो उन्होंने देखा, सर झुका तो उन्होंने तो देख लिया। इधर ये वैष्णव ने जब भगवान की सेवा करी मथुरा में, ये नहीं देख पाए कि सर उन्होंने भी झुकाया, पर ये उसको नोटिस नहीं कर पाए। इन्होंने यहाँ नोटिस किया विठलनाथ जी ने, वो तो जानते थे सब। अच्छा भगवान उनसे, क्योंकि ये भी भगवान के अंश थे तो भगवान उनसे वार्तालाप किया करते थे, तो इन्होंने पूछा जय जय ये क्या हुआ कि हमारी सेवा के समय आपने सिर झुका लिया, ये क्या? तो भगवान ने उनको बताया कि एक वैष्णव ने मेरे लिए अपना सर्वस्व अर्पण करके मुझे फूलमाला पहनाई है, तो वो उसके लिए, उस वैष्णव से मिलने के लिए विठलनाथ जी मथुरा आए, उससे मिले और उससे बताया कि भगवान तुम पे कितने प्रसन्न है, तुमने अपना सर्वस्व अर्पण किया है, तो भगवान भी झुक गए हैं तुम्हारे सामने। ये सेवा का भाव है, जहाँ सेवा का ऐसा भाव होता है। एक दूसरा सेवा का एक ऑपोजिट भी सुन लीजिए। एक पंडित जी थे, उनको चार मंदिर की सेवा मिली हुई थी। अब वो आती जाती सेवा करते थे, वो छींटा मार दिया कहीं स्नान की जगह भी, क्योंकि चार चार की सेवा करनी है, कौन इतना ध्यान देगा, इधर कर दिया फूल फेंक दिए, इधर फेंक दिए, इधर कर दिए, चार की एक आध की वो ठीक से सेवा कर लेते थे, ज़्यादा उनके पास टाइम होता नहीं था। भोग भी एक दिन बना लिया, महीना भर खलाते, शक्कर पारे बना लिए, एक महीना चलेंगे, वही भोग लगाते रहते थे। एक दिन भोग लगा दिया, वही सारे विग्रहों में वही बांट देते थे, एक ही दिन का पूरे दिन वही भोग चलेगा। तो उनका भोग भोग में कुछ वो था नहीं, सेवा में इतनी रुचि नहीं थी। तो एक दिन की घटना है कि उन्होंने वो महीने भर के सूखे शक्कर पारे भगवान के आगे दो डाल दिए ऐसे ही करके, तो भगवान जी सुदर्शन की तरफ देखने लगे। भगवान नारायण खड़े हुए ना अपने लेके, तो भगवान ने सुदर्शन की तरफ देखा, तो सुदर्शन जी ने कहा जय जय क्या? तो बोले कि देख रहे हो शक्कर पारे? बोला हाँ महाराज आरोगी है। तो भगवान मुस्कुराए कि ये आरोगी नहीं योग्य लग रहे हैं आपको? बोले कि क्या क्या हुआ प्रभु? अरे बोले कितने कठोर हैं, थोड़े से अगर आप अपने इससे इसे काट वाट दोगे तो हम आरोग लेंगे। ये भगवान का एक मतलब उनकी लीला चल रही है, एक खेल चल रहा है, हंस रहे हैं भगवान। तो सुदर्शन भी हंस रहे हैं, वो भी कह रहे हैं महाराज अगर ये शक्कर पारे काट दिए तो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, मतलब हमारे दांते घिस जाएंगे, हम तो किसी योग्य नहीं रहेंगे। तो दोनों हंस रहे हैं कि ऐसे आजकल भक्त हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भाई तो फिर हमारे दांत कैसे चबा पाएंगे, जब तुमसे ना कटेंगे तो हमारे दांतों से कैसे कटेंगे, ऐसे से तो उपवास ही कर लेते हैं हम। तो ऐसा भी होता है कि लोग ऐसा भगवान को बिना देखे समझे कुछ भी भोग अर्पण कर दिया, भगवान लगाए ना लगाए उन्हें कोई मतलब नहीं है, भगवान है नहीं है मूर्ति है उनके लिए, तो ये भी सेवा चल रही है। तो जहाँ आपके भाव भगवान से जुड़े हैं वहाँ भगवान प्रत्यक्ष हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है कि मुझे पत्र पुष्प जल फल कुछ भी अगर प्रेम भाव से अर्पण करोगे आप तो मैं उसे प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ, प्रीति सहित खाता हूँ उसे, जैसे भाव से आप दोगे वैसे भाव से मैं ग्रहण करूँगा। तो जब भगवान बोल रहे हैं पत्ता भी ले लेता हूँ मैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको कि आप छप्पन भोग मुझे अर्पण करें, एक फल दे दो कुछ, एक जल दे दो मुझे, थोड़ा जल दे दो वो भी तुम मुझे दोगे तो मैं ग्रहण करूँगा। यही भाव यहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का है, सेवा भाव, जो पुष्टि मार्ग है इसमें सेवा भाव की आधिक्य है, इसकी इसी की अधिकता है, सेवा भाव की इसी पे जोर दिया गया है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म दक्षिण में ही इनका जन्म हुआ है, दक्षिण भारत में ही। तो इनके जो माता पिता जी थे, जो इनका कुल था, इनके कुल में कोई सोम यज्ञ करने वाले एक यज्ञनिष्ठ ब्राह्मण थे, उन्होंने संकल्प किया था 100 सोम यज्ञ करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए, बीच में वो चले गए, शरीर त्याग करना पड़ा उन्हें। फिर इनकी 7 पीढ़ियों में जो भी आते थे वो उनके वचन को पूरा करने के लिए यज्ञ करते रहे, तो वो 7वीं पीढ़ी में पूरे हुए 100 यज्ञ, वो श्री लक्ष्मण भट्ट जी हुए, उन्होंने पूरे किए। और वो लक्ष्मण भट्ट जी श्री मद्वल्लभाचार्य जी के पिताजी हुए, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके पिताजी होने का। तो 100 यज्ञ पूर्ण करने पे ही, और किसी ने उनको बताया था जो 7वें थे कि अगर आप 100 यज्ञ पूर्ण करोगे तो आपके यहाँ एक महान विभूति आपके यहाँ घर में जन्म लेगी। तो ये फिर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पैदा हुए। तो इनके आते ही जब इनका जन्म हुआ, अद्भुत आनंद चारों तरफ फैल गया, जैसे भगवान के जन्म के अवसर पर होता है। और इनका जन्म भी, जन्म की घटना भी ऐसी है कि वो उससे पहले हम थोड़ा सा जाते हैं इनके जन्म की घटना के बारे में, कि एक बार इनके माता पिता, उन्होंने काशी जी में एक वृहद महाभोज, एक बड़ा भंडारा देने की ठानी कि हम चलते हैं। इनकी माता जी इल्लमगारू वो गर्भवती थी उस समय, 7वें महीने का गर्भ था। ये चलते चलते जंगल के रास्ते जा रहे थे, तो जब ये चंपारण्य वन के पास में पहुँचे, वहाँ इन्हें खबर मिली कि काशी जी में तो यवनों का आक्रमण हो गया है, तो वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। तो ये वहाँ से वापस हुए और एक शमी का वृक्ष था उसके नीचे ही ये बैठ गए, विश्राम कर रहे थे, और उनको उस टाइम प्रसव पीड़ा हुई और इन्होंने जन्म दिया पुत्र को। 7वें महीने के वो प्रसव था, तो 7वें महीने में जो पुत्र हुआ उसको हलचल कुछ थी नहीं, हलचल कुछ नहीं थी, तो इन्हें लगा कि मृत बालक हुआ है। उस बालक को इन्होंने वहीं छोड़ दिया और ये चल दिए फिर वापस अपने घर की तरफ, वापस लौट चले। अगले दिन इन्हें वहाँ, जहाँ ये अगले दिन पहुँचे, वहाँ इन्हें फिर समाचार मिला कि नहीं, वो जो यवनों का आतंक था वो ख़त्म हो गया है, शांत हो गया है, आप जा सकते हैं अभी। फिर ये वापस आए, वापस फिर ये जब वहाँ पे उस शमी के वृक्ष के पास आए, तो इन्होंने एक बड़ा चमत्कार देखा कि शमी के वृक्ष के पास ये अंगूठा चूस रहे हैं बालक, चारों तरफ आग लगी हुई है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और बालक बीच में, चारों तरफ अग्नि है और बीच में अंगूठा चूस रहे हैं, ये अग्नि के अवतार माने गए हैं भगवान वल्लभाचार्य जी। तो ये चमत्कार देख करके ये समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई देव प्रकट हुए हमारे यहाँ। तो इन्होंने, इनके पिताजी ने इनको उठाया, छाती से लगाया, और फिर उन्होंने अद्भुत आनंद मनाया, जैसे भगवान का जन्म ऐसे इन्होंने उत्सव मनाया, भोज भंडारे किए, इनका जन्म हुआ। 13 वर्ष की आयु में ये वेद पुराण में निष्णांत हो गए थे। तो फिर ये वहाँ से निकले तीर्थाटन के लिए, तीर्थ करते हुए पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे, विजयनगर आ पहुँचे। वहाँ के राजा थे कृष्णदेव जी। कृष्णदेव जी ने बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानवान पुरुष थे, संत थे, और जो वेदों के ज्ञाता थे, उन सबकी एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया हुआ था, और उसमें वो देखना चाह रहे थे कि किसका मत भारी है, किसका मत बड़ा है। वो अपना अपना वक्तव्य सबके सामने रखेंगे, अपने संप्रदाय का, अपने विचारों का। तो यहाँ पे सभी ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की अवस्था मात्र 13 वर्ष की थी उस समय। इन 13 वर्ष की अवस्था में इनको जगत गुरु घोषित किया गया सबके बीच में। इन्होंने अपने संप्रदाय को रखा, और जो अपना शुद्ध अद्वैत सिद्धांत था उसका यहाँ पे सबके सम्मुख प्रतिपादन किया, और सब बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति का इन्होंने सबके बीच में बोलबाला करवाया। तो ये करते हुए तीर्थाटन कर रहे थे, और ये पहुँचे श्री पंडरीनाथ जी। श्री विट्ठल भगवान के दर्शन किए इन्होंने, विट्ठल भगवान के दर्शन किए तो साक्षात विट्ठल भगवान जी ने इनको कहा कि आप ब्याह कर लीजिए। ये कहने लगे, जय जय, मैं ब्याह कर लूँ? मैंने तो सोचा है कि मैं तो ब्रह्मचारी सन्यासी बन के रहूँगा। उन्होंने कहा नहीं। तो ये बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, पर आपको पुत्र रूप में आना होगा। प्रभु मुस्कुराए, क्यों? इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा विवाह के पश्चात जो मोह होता है, मेरा अभी तो मोह आप में है, भगवान में ही मोह है, फिर मेरा मोह कन्वर्ट हो जाएगा स्त्री या पुत्र में, सो सबसे ज़्यादा तो पुत्र में होता है, तो इसलिए पुत्र रूप में आप होंगे तो मैं भटकूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो फिर इनको 2 पुत्र हुए, इन्होंने पुत्र का नाम भी रखा विट्ठलनाथ, विट्ठल जी के नाम भी रखा विट्ठलनाथ, और गोपीनाथ दूसरे पुत्र का नाम। और इनके जाने के बाद में सेवा उन्होंने ही संभाली, तो ये भगवान के अंश थे विट्ठलनाथ जी भी। जैसे वल्लभाचार्य जी भगवान श्रीनाथ जी से बात किया करते थे, यतिपुरा में भगवान श्री कृष्ण जी इनको मिले थे, और वो घटना भी ऐसे थी कि जब ये यहाँ पे अपना गिरिराज जी में आए, तो गिरिराज जी में भगवान श्री कृष्ण जी के इनको दर्शन हुए कि 13-14 वर्ष की अवस्था है भगवान श्री कृष्ण जी के, और वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं बालक, ये पीछे पीछे चले गए। तो गिरिराज जी के ऊपर चढ़ के भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पे खड़े हो गए मुरली बजाते हुए त्रिभंगीलाल। तो इन्होंने देखा भगवान को, ये बोलने लगे भगवान आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, अदृश्य मत हो। भगवान ने कहा कि मैं अपना यहाँ पे मूर्ति विग्रह तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ, इसकी ये ही कलयुग में तुम्हारे भगवान रहेंगे, और मैं साक्षात होकर विराजमान रहूँगा, उद्धार होगा लोगों का। तो भगवान श्रीनाथ जी, उन्होंने जैसे गिरिराज जी को धारण किया था, उस अवस्था में श्रीविग्रह प्रकट हुआ, और श्रीविग्रह को लेकर फिर इन्होंने वहीं यतिपुरा में स्थापना करी, और ये सेवा करने लगे भगवान की। तो ये भगवान की सेवा करते रहे। इधर पुत्र रूप में इनको विट्ठलनाथ जी और गोपीनाथ जी मिल गए हैं। वो गोकुल में सेवा, उनको विट्ठलनाथ जी को गोकुल में सेवा देती थी, ये गोकुल में भी सेवा करते थे भगवान की, और जतिपुरा में भी सेवा करते थे श्री श्रीनाथ जी की। तो एक बार क्या हुआ कि ये तीर्थाटन में थे पति पत्नी दोनों श्री वल्लभाचार्य जी, और ये पहुँचे नीलांचल श्री जगन्नाथपुरी जी। श्री जगन्नाथपुरी जी में उस समय चैतन्य महाप्रभु जी रह रहे थे। तो जहाँ ये ठहरे हुए थे वहाँ चैतन्य महाप्रभु जी आए और आके इन्होंने भोजन मांगा चैतन्य महाप्रभु ने कि कुछ भोजन आरोगना है। उस समय ये खा पी के इन्होंने ठाकुर जी को शयन करा दिया था। तो इन्होंने देखा, इन्होंने अपनी स्त्री से कहा वल्लभाचार्य जी ने कि भोजन बनाओ शीघ्र। उन्होंने भोजन तैयार किया कि ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद देते। बोले नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाने की आवश्यकता, ये स्वयं ठाकुर हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण अवतार हैं, ये श्री कृष्ण है, ठाकुर जी के भोग की आवश्यकता नहीं, इनको अमोनिया परोसेंगे। इनको अमोनिया परोसा चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़े प्रेम से पाया, और उन्होंने कहा कि आप वल्लभाचार्य जी के बारे में उनके शब्द थे कि आप भी देवकी नंदन श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं आप भी। तो उनका ये कहा, देखो दो अलग अलग संप्रदाय के लोग मिल रहे हैं। अभी तो लोगों में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को मानते नहीं हैं, लेकिन दो महान पुरुष एक दूसरे को, वहाँ संप्रदायवाद नहीं होता, लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। किसी भी संप्रदाय से जाओ और चारों संप्रदाय का वही है, मत एक ही है। आप उनकी विशिष्टता है कि हमारी ये विशिष्टता है, इस तरीके से सेवा करते हैं, जैसे निम्बार्काचार्य जी की है, और राधा कृष्ण के निकुंज रूप की सेवा करते हैं, यहाँ पे भगवान की जो है श्री कृष्ण स्वरूप में सेवा हो रही है, कहीं पे सीताराम स्वरूप में सेवा हो रही है, कहीं सीता लक्ष्मी नारायण जी के रूप में है। वही भगवान जिसकी जैसी इच्छा है उसी रूप में मान के वैसी सेवा कर लो भाई, जिसको जैसी इच्छा हो वैसे संप्रदाय में जाओ और वहाँ दीक्षित हो और सेवा करो। भगवान वही है, जाना वही है, कोई भेद नहीं है ज़्यादा चारों संप्रदाय में। तो खैर यहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से बड़ा अच्छा इनका मिलन हुआ, वापस आए, और ये भी बद्रिकाश्रम गए, वहाँ नारद जी के दर्शन हुए, श्री व्यास जी के दर्शन हुए, नर नारायण भगवान के दर्शन हुए इनको भी। एक बार ये गहवर वन में जब ये बरसाना आए हुए थे, तो गहवर वन में शिष्य गण भी साथ में थे, तो एक अजगर को बहुत चींटियाँ लगी हुई थी, वो मार्ग में पड़ा हुआ था और बहुत चींटियाँ खा रही थी उन्हें, वो तड़प रहा था। इनके शिष्यों ने देखा कि भगवान ये, तो इन्होंने दया की उस पर और उसका उद्धार किया, उसको भगवान धाम भेजा। शिष्यों ने कहा महाराज जी कौन थे और इतनी बुरी गति इसकी कैसी थी, इतनी चींटियाँ खा रही थी इसे। उन्होंने बताया कि ये पूर्व जन्म में गुरु था इन शिष्यों का, ये चींटियाँ शिष्य रूप में थे और इसने इनके धन का दुरुपयोग किया था। मतलब जैसे आज भी जो लोग गुरु बन जाते हैं अपने शिष्यों से धन ऐंठते हैं और अपना जीवन अच्छा कर लेते हैं, समझते हैं कि हमने, तो उनका क्या गति होगी वो नहीं जानते हैं। तो बोले वही इनके साथ हुआ है, अपने शिष्यों के धन पे पले बड़े थे ये, अपना जीवन इन्होंने अपने जो भी ऐश्वर्य भोगा है अपने शिष्यों के धन पे, आज वो गति थी इनकी। तो दयालु पुरुष भगवान के जो जितने भी संत होते हैं वो दयालु होते हैं, सबका उद्धार करते हैं, उसका भी उद्धार करके आगे बढ़े। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक इनके यहाँ पे संत आए हुए थे, वैष्णव थे एक, उनके मन में भगवान के विग्रह में ही, जो भी विग्रह होते हैं भगवान के, उनके मन में ये भेद था कि जो शालिग्राम जी होते हैं वो श्रेष्ठ विग्रह, श्रेष्ठ भगवान हैं, जो भगवान के वैसे विग्रह हैं मूर्ति स्वरूप में, उनमें और इनमें भेद है, ये छोटे भगवान ये बड़े भगवान। एक दिन वल्लभाचार्य जी ने उनको समझाया कि भगवान की किसी भी विग्रह में, भगवान की किसी भी स्वरूप में कोई भेद नहीं है, वो एक ही शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण एक ही शक्ति है, तो इसलिए इनमें भेद नहीं करना चाहिए। उसकी समझ में नहीं आई, तो उसके पास दो भगवान थे, एक विग्रह रूप में थे और एक शालिग्राम जी थे। तो एक दिन उन्होंने जानबूझ के जब शयन कराया शालिग्राम जी को, श्री विग्रह की छाती पर रख के सो गए वो, तो अगले दिन शालिग्राम जी की पूरा बुरादा चूरा चूरा मिला उसे। उसको बड़ा दुख हुआ, हाय मैंने वल्लभाचार्य जी की बात नहीं मानी, वो रोया कि ये क्या हो गया भगवान। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारे दंड है, तुम्हारे अपराध का दंड है ये। वो रोया, उन्होंने क्षमा मांगी वल्लभाचार्य जी से, भगवान मेरे भगवान तुम वापस हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, जो ये चूरा है इसको भगवान के चरणामृत में भिगो के गोलियाँ बना लेना और ये पूर्ववत हो जाएंगे शालिग्राम, वो वैसी पूर्ववत शालिग्राम हो गई। इनको पता चला कि नहीं, ये तो वल्लभाचार्य जी की दिखाने का वो था कि भगवान में कोई भेद नहीं होता, तो भगवान में कहीं कोई भेद नहीं होता। इनके शिष्यगण वल्लभाचार्य जी के इतने अद्भुत शिष्य हुए हैं, श्री कुंभनदास जी, श्री कृष्णदास जी, कुंभनदास जी के जो लड़के थे श्री चतुर्भुजदास जी और सूरदास जी, ऐसे कुछ इनका परिकर था जो भगवान के ऐसे भक्त थे जिनके सामने भगवान साक्षात प्रकट होकर खेला करते थे। कुंभनदास जी के साथ भी, चतुर्भुजदास जी के साथ भी, सूरदास जी के साथ भी, तो भगवान साक्षात प्रकट रहा करते थे। तो ऐसे ऐसी कृपा थी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की अपने इन शिष्यों पे। कुछ शिष्य ऐसे थे, एक उनमें एक और शिष्य थे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के, उनका ऐसा था कि उनको ये बोला हुआ था कि भाई भगवान को भी भोग की आवश्यकता नहीं है, इनको पहले दे, शिष्य को इनको पहले दे दिया करो। क्यों? एक बार की घटना थी कि इनको भूख लगी हुई थी, थाल जा रहा था, तो इन्होंने बीच में से ही थाल जाते जाते इन्होंने बीच में से खा लिया था, भगवान का थाल जा रहा है, इनसे रुका नहीं, इन्होंने उठाया और खा लिया ऐसे। तो जो भोग लगा रहे थे उन्होंने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से कहा कि इन्होंने देखो कितना बड़ा, और ये तो सारा भोग झूठा कर दिया भगवान का। उन्होंने कहा झूठा नहीं हुआ, भगवान ने आरोग लिया, इनके जरिए भगवान ने आरोग लिया। और एक बार ऐसा हुआ भी था जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इनको बोल दिया कि अगर भगवान का भोग तैयार ना हो और इनको भूख लगी हो तो इनको पहले दे दिया करो, बिल्कुल ये मत सोचा करो कि भगवान। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि ये रसोई में गए, इनको भूख लगी थी, तब तक भोग बना ही था कि अब जाएगा, फिर टाइम लगेगा, ये बोले कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे निकाल के दे दो। इनको निकाल के दे दिया भोग, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है, इन्होंने खा लिया, पा लिया। जब भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को गए, ठाकुर जी को थाल रखा, ठाकुर जी ने लिया नहीं, बोला जी क्यों? बोला अरे हमने पा लिया। तो इनका ऐसा प्रभाव था। तो ऐसे ही बहुत सारे भक्त होते हैं भगवान के, जिनके साथ भगवान ऐसी लीलाएँ करते हैं। तो ऐसे ही हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं जिन्होंने ऐसे भक्तों को सहारा दिया, अपने सानिध्य में रखा, और ऐसे भक्त प्रकट किए जिन्होंने अनंत लोगों का उद्धार किया है। एक बार इनकी संन्यास लेने की इच्छा हुई तो अपनी जो श्री पत्नी है उनसे पूछा कि भाई हम संन्यास ले लेते हैं, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप संन्यास नहीं लेंगे। बोले ठीक है। घर में एक दिन आग लग गई, आग लगी तो वो बचाने के चक्कर में वो बोली कि आप भागो, निकल जाओ, आप घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, पत्नी ने ऐसा कहा, घर से निकल जाओ। तो इन्होंने समझा कि बस आज संन्यास की आज्ञा मिल गई, और उसी दिन ये घर से निकल गई और इन्होंने संन्यास ले लिया अपने पुत्रों को भगवान की सेवा दे करके, और ये चले गए संन्यास में। और फिर इन्होंने गंगा जी के तट पे, काशी में गंगा जी के तट पे हनुमान घाट पे ही ध्यान लगाकर, ध्यान समाधि में भगवान के अर्पण देह को करके भगवत धाम को चले गए। तो ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की चरणों में हमारा प्रणाम है। ऐसी भगवान की कथाएं हमें सुनने को मिलती रहे, कहने को मिलती रहे, और उनके चरणों में हमारा अगाध प्रेम उमड़ता रहे भगवान के संतों के। तो सभी भक्तों को, संतों को हम प्रणाम करते हैं, यहाँ पे विराम करते हैं। और यदि आपको अच्छी लगी हो कथाएं तो आप बताइए, फिर आगे की कथा करेंगे। सभी भक्तों को प्रणाम, सुनने वाले को प्रणाम, श्री भक्तमाल जी के, सभी संतों, भक्तों, वैष्णवों को प्रणाम, श्री भक्तमाल के स्वामी श्री हरि राधे श्याम सीताराम को प्रणाम। राधे श्याम।